मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 29 अगस्त 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान दोस्तों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं हिमांशु गुप्ता पानीपत से, विशाल गुप्ता आप भी पानीपत से, ईशु खेड़ा खुर्द दिल्ली से, मोहम्मद मकसूद आलम बोकारो झारखंड से और सतीश कुमार आजमगढ़ से। तो हिमांशु, विशाल, ईशु, मोहम्मद मकसूद और सतीश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बीच के जो 2 दिन रहे, छुट्टियों के रहे, काफी अच्छी तरीके से आपने बिताए होंगे। अपने जो बाकी काम होते हैं, इस तरह के काम जो आपके अभी जो इस सप्ताह के 5 दिन जो आपके हाथ में रहेंगे उसे डिस्टर्ब न करें, उन सबको आपने पूरा कर लिया होगा और एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आप सब जो जो भी काम कर रहे हैं, जिस जिस तरह के भी काम में लगे हुए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ लग गए होंगे। तो मित्रों, आइए हम सब भी अपने ये डेली ऑडियो गाइडेंस के काम में लगे हैं और इसकी शुरुआत मैं करता हूं कल के AIR न्यूज से। कल के AIR न्यूज में मित्रों, आपने देखा कि कुछ बहुत ज्यादा बात करने को नहीं है सिवाय एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के। खासकर न्यूज का ज्यादा हिस्सा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात के तहत जो जनता को एड्रेस किया था, उसकी ज्यादातर सूचनाएं थी। उसमें सामान्य सी ही बातें थी। सिविल सर्विस के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ी बात हम निकाल सकें और उसे एक टॉपिक बनाकर आगे बढ़ा सकें। रोज मर्रे की चीजें थी, कश्मीर पर रोज आप न्यूज सुन रहे हैं, एक तरह से जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो खबरें अखबारों में भी आ रही हैं। पर्यावरण को लेकर के उन्होंने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के बारे में कहा, वो एक इम्पॉर्टेंट बात कह सकते हैं, छोटी सी है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको लेकर हम अलग से बातचीत कर सकें। हाँ, एक बात जो उसमें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, जिसकी घोषणा 3-4 दिन पहले भी हो चुकी है, शायद हम लोगों ने डेली ऑडियो गाइडेंस में उसे नहीं लिया था क्योंकि अलग से न्यूज में शायद उसका उल्लेख सुनने को नहीं मिला था, कि आगे आने वाले जो ओलंपिक होंगे, स्पेशली जो 2 ओलंपिक होंगे, उसके लिए सरकार ने अभी से एक टास्क फोर्स जैसा बना दिया है, मतलब एक ग्रुप बना दिए हैं कि वे अभी से उनकी तैयारी शुरू कर दें। ये एक अच्छा कदम खेल की दिशा में माना जा सकता है। दोस्तों, न्यूज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर थी, जिसे सिविल सर्विस के लिहाज से महत्वपूर्ण मानना चाहिए और स्पेशली प्री की दृष्टि से, वह है इसरो के द्वारा स्क्रैम जेट इंजन का सफल प्रक्षेपण किया जाना। आपने देखा है कि इसरो जो हमारा हरिकोटा में स्थित जो अंतरिक्ष केंद्र है, मित्रों, उसने एक यान प्रक्षेपित किया है, इंजन कह लीजिए, इंजन का सफल प्रक्षेपण किया है। और इस इंजन की जो सबसे बड़ी खासियत है, और खासकर आपको इसी बात को ध्यान में रखना, नाम तो ठीक है, नाम आपने सुन लिया, स्क्रैम जेट इंजन नाम है और इसको एयर ब्रीदिंग रॉकेट भी कहा जाता है। एयर ब्रीदिंग रॉकेट क्यों कहा जाता है, अभी हम उस पर आएंगे। तो नाम इसका स्क्रैम जेट इंजन है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसके लिए इसकी चर्चा होगी, और मैं समझता हूं कि इसकी यही खासियत इसे सिविल सर्विस के लिए भी थोड़ी सी उपयोगी बना देती है, वो ये कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी ऐसी है दोस्तों कि जब ये ट्रेवल करेगा, मतलब उड़ेगा, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होती है, आपको मालूम है कि वायुमंडल में भी ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को वो ब्रीद करेगा, मतलब उसको वो ग्रहण करेगा और फिर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो ईंधन के रूप में करेगा और फिर वो ईंधन से वो इंजन जो है वो रॉकेट है चलेगा। तो चूंकि ये हवा में मौजूद पहले से ही मौजूद ऑक्सीजन को लेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एयर ब्रीदिंग रॉकेट, जो एयर से ही ब्रीदिंग ले रहा है। दोस्तों इसकी जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है वो ये है कि जो इससे पहले जो दूसरे इंजन होते थे उसमें क्या होते कि दो चैम्बर होते थे, तो एक में एक चैम्बर में आप यूं कह लीजिए कि ऑक्सीजन गैस होती थी और दूसरे इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन होती थी। फिर होता यह था कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके फिर ईंधन का काम करते थे, वो जलते थे और फिर उसके जलने से जो शक्ति पैदा होती थी उससे वो रॉकेट आगे बढ़ता था। अब आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि पहले के इंजन में दो चैम्बर, एक में आपके लिक्विड हाइड्रोजन है दूसरे में ऑक्सीजन है, तो अब वो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी जो हवा में मौजूद रहेगी उसको लेगा, तो सीधी सी बात है कि अब एक चैम्बर की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि अब ऑक्सीजन आपको भेजना ही नहीं है, अब आपको सिर्फ लिक्विड हाइड्रोजन ही भेजना है, तो चैम्बर भी एक होगा। अब आप देखिए कि इसका क्या फर्क पड़ेगा, मैं कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं साइंस का स्टूडेंट भी नहीं रहा हूं तो साइंस की बातें कहने में मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि कहीं मिसिंग हो जाती है और साइंस में तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने का मतलब है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाना, यानी कि थोड़ी सी गड़बड़ी से थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि आपने एक चैम्बर कम कर दिया, उसमें ऑक्सीजन गैस का वजन भी कम हो गया, तो सीधी सी बात है कि एक तो ये हल्का हो गया, लाइट हो गया, जो इंजन हुआ वो पहले की तुलना में कम वजन का हो गया, और कम वजन का हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी लागत भी कम होगी क्योंकि जितने अधिक वजन को आप अंतरिक्ष में या ऊपर पहुंचाना चाहेंगे उतना ही ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। तो एक स्वाभाविक रूप से जो इसका परिणाम होगा वो ये होगा कि जो लॉन्चिंग कॉस्ट है, जो प्रक्षेपण यान जो लॉन्च किए जाते हैं, ये एक तरह से लॉन्चिंग व्हीकल ही है कह लीजिए, उसकी कीमत कम हो जाएगी, मतलब यहां तक कैलकुलेट किया गया है कि लगभग 10 गुना कम हो जाएगी, ये स्थिति इसमें होगी। तो मित्रों ये एक बहुत बड़ी सफलता है भारत की, और क्योंकि भारत ने जो ये इंजन छोड़ा भी है ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से है, और आप देख रहे हैं कि खासकर प्रक्षेपण टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत लगातार काफी आगे बढ़ता जा रहा है। और आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे सार्क देशों के जो मेंबर्स हैं और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जब उनकी यात्राओं पर गए थे तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप इस तरह के रॉकेट आपके यान छोड़ने में भारत आपकी मदद करेगा और अंतरिक्ष जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। तो उस समय अखबारों में इसे एक तरह से एक डिप्लोमेसी की का नाम दिया गया था कि ये एक तरह से प्रक्षेपण राजनयिक है, तो उसका आप हिस्सा मान सकते हैं कि भारत धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी में जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो नो डाउट कि इससे विश्व में इसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देश खासकर जो गरीब और छोटे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते, इसका खर्च वहन नहीं कर सकते, उनकी मदद करके उनसे अपनी मित्रता के संबंधों को काफी घनिष्ठ बना सकता है, तो ये भी फायदा देश को मिल सकता है। तो मित्रों मुझे लगता है कि शायद कल के अखबारों में, कल परसों के अखबारों में इस पर एडिटोरियल कमेंट्स आए, तो उस समय फिर मैं आपको एडिटोरियल कमेंट्स जो भी इस पर दूसरी चीजें अवेलेबल होंगी वह मैं उपलब्ध कराऊंगा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज आइटम को बहुत ही विस्तार से कवर किया है बड़े साइंटिफिक तरीके से, तो वो प्रेस क्लिपिंग्स मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। दोस्तों न्यूज में तो और कुछ भी खास बात नहीं थी, एक बात मैं यहां ऐड करना चाहूंगा और खासकर अपार्ट फ्रॉम द AIR न्यूज, वो ये कि पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा अखबारों में भी एक खबर काफी आई और चैनल्स पर भी वो खबर बार बार दिखाई गई, जो बड़ी दुर्भाग्यजनक खबर थी और बड़ी करुणा से भरी हुई खबर थी, जो उड़ीसा की एक खबर थी दोस्तों की, एक मांझी नाम के जो व्यक्ति हैं कैसे अस्पताल में उनकी पत्नी का निधन हो गया, उनको कोई अस्पताल से फिर मदद नहीं मिली और रात के 2 बजे फिर वो अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर के और पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े और उनके साथ में उनकी 10-12 साल की बेटी भी थी। और वो जब सड़क पर अपने वो अपनी पत्नी के शव को लेकर के जा रहे थे तो फिर बाद में किसी ने मीडिया को सूचित किया, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने फिर जो भी व्यवस्था हो एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनको उनके घर तक भिजवाया। ये मित्रों खबर थी और सच पूछे तो बहुत ही हृदय विदारक खबर थी। इनफैक्ट मैं ईमानदारी से स्वीकार करूं कि ये डीडी चैनल्स पर भी एक दृश्य दिखाया गया था और देखने के बाद ही मैं अंदर से बिल्कुल हिल सा गया था और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसे देख पाऊं। मतलब जो महसूस हो रहा था मैं शायद कहने की भी स्थिति में नहीं हूं। दोस्तों ये एक दुखद घटना थी। इस घटना को आप किस आधार पर लेंगे? अब मैं सिविल सर्विस के लिहाज से आ रहा हूं। मुझे लगता है दोस्तों कि दो चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, ऐसे के लिहाज से भी मैं आपको कह रहा हूं और जनरल स्टडीज के लिहाज से भी। ऐसे का पार्ट बनता है वो संवेदनहीनता या संवेदनशीलता, कि जो हमारा प्रशासन है क्या सच में इस सीमा तक संवेदनहीन है, जबकि कुछ प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे। अदरवाइज प्रशासन पर सीधे सीधे आरोप लगा देना सबसे आसान काम है कि डॉक्टर ने नहीं सुना और दूसरे लोगों ने नहीं सुना, और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आप देखते हैं कि वो शुरू हो जाता है। जैसा कि हमारे मैराथन दौड़ की एक खिलाड़ी ने भी आरोप लगाया कि उन्हें पानी ही पीने के लिए नहीं मिला अभी ओलंपिक में, तो वहां भी आपको एक संवेदनहीनता की स्थिति दिखाई दे रही है। और ये कह लीजिए कि जो सरकारी तंत्र है उसी से जुड़ी हुई ये संवेदनहीनता है। तो मित्रों ये तो स्ट्रेट बात हुई कि आप सीधे सीधे कह दीजिए कि हाँ सरकारी तंत्र तो ऐसा ही है और गैर जिम्मेदाराना रुख है, उनमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है, वो किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते, जिम्मेदारी को टालते रहते हैं। तो इस तरह की बातें कही जा सकती हैं और कही ही जाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे लिखने का या समस्या को समझने का बहुत बहुत ही सरल तरीका होगा, सिविल सर्विस के स्टैंडर्ड की बात नहीं हुई। दरअसल ये बात तब बनेगी मित्रों जब आप इस पर कुछ सवाल खड़े करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर सवाल खड़े करिए और अपनी तरफ से ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। सवाल कुछ इस तरीके से उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि खड़े किए जा सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि जो लोग प्रशासन में, चलिए हम इसको प्रशासन की संवेदनहीनता मान लेते हैं, तो जो लोग प्रशासन में हैं वो लोग कौन हैं? वो वही हैं जो समाज के लोग हैं, वही प्रशासन में पहुंच जाते हैं। तो समाज के लोगों में कितनी संवेदनशीलता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं भी सुनने में आती हैं। बड़े शहरों में आपने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन कोई उसे उठाने वाला नहीं है, सेल्फी ले रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं, इस तरह की बहुत सी घटनाएं सुनने को आपको मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं। तो जहां अगर समाज ही संवेदनहीन होगा तो क्या प्रशासन से आप संवेदनशीलता की उम्मीद कर सकते हैं? यहां से आप चीजों को उठा सकते हैं। राजनीति की स्थिति क्या है हमारे देश में? अब जिस तरह के समाज के निर्माण की कोशिश हो रही है, आप देख रहे हैं कि पिछले 25 सालों में हमारा अब जो समाज है उसकी जो दिशा है वो पूंजीवादी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है। मतलब धन का बहुत ज्यादा प्रभुत्व, धन की बहुत ज्यादा पकड़ बढ़ती जा रही है। तो अगर धन ही सब कुछ है तो फिर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता पर सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि धन ही अगर सब कुछ वही बन गया है तो फिर मनुष्य की कोई वक्त नहीं रह जाएगी। आप एजुकेशन सिस्टम में देख लीजिए मित्रों, के एजुकेशन में आपको दिखाई देगा कि जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं उसके डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, लिटरेचर कोई नहीं पढ़ना चाहता, समाजशास्त्र कोई नहीं पढ़ना चाहता, इनके डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, हर कोई इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं। किस लिए बनना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि वो कोई सेवा करना चाहते, इसलिए कि इनमें नौकरी की संभावना, न केवल नौकरी की ही संभावना है बल्कि बड़े बड़े पैकेजेस की संभावनाएं हैं। तो क्या फिर अगर ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स अगर खारिज होते चले जा रहे हैं समाज से, तो क्या इसका फिर समाज की संवेदनशीलता पर प्रभाव पड़ रहा है? तो इस तरीके की ढेर सारी चीजों को लेकर के, और जब आप सवाल उठाएंगे और उनके उत्तर ढूंढेंगे तो आपके पास मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा एक मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी जो दृष्टि होगी, उसकी जो दिशा होगी, वो समाजशास्त्रीय होगी। समाजशास्त्रीय कहने का मतलब है मित्रों वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके की होगी, एक साइंटिफिक होगी, और उसमें एक नई चमक होगी और तर्क की इतनी ताकत होगी कि जो पढ़ने वाला भी है उसको लगेगा कि नहीं ये जो बात कह रहा है बात तो सही है। तो कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि खासकर इस सवाल को मैंने इसलिए उठाया है कि आप इस पर ऐसे के तरीके से सोचिए और तार्किक तरीके से सोचिए, क्योंकि ऐसे भी आपके सिविल सर्विस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और मैं आपको बताऊं कि एक केवल ऐसे का पेपर अगर आपका बहुत अच्छा बनता है तो आपको इन कर सकता है, और अगर खराब बना तो आउट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो फर्क होता है स्कोरिंग का वो बहुत होता है। और कई स्टूडेंट्स बीच बीच में मुझे मेल लिखते रहते हैं कि सर ऐसे के बारे में भी कुछ बताइए, तो ये थोड़ी सी मैंने बताने की कोशिश की है। ये तो एक पक्ष हुआ मित्रों ऐसे का। दूसरा पक्ष, अब इससे हम जनरल स्टडीज के लिए क्या निकालेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आपने खबर पढ़ी होगी कि जो माझी के जो पत्नी की जो मृत्यु हुई है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुई है, जिसे क्षय रोग हम कहते हैं। तो ये जो क्षय रोग है ये बड़ा पुराना रोग है। पुरानी फिल्मों में तो आप देखेंगे कि क्षय रोग की बड़ी चर्चा होती थी। अगर आपने ऋत्विक घटक की फिल्म देखी हो मेघे ढाका तारा, तो उसकी जो नायिका है उसकी जो मृत्यु होती है वो क्षय रोग के कारण ही होती है। और मित्रों जब मैं फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स करने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में गया था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, होता यह था कि दिन भर फिल्म लेक्चर्स वगैरह होने के बाद रात में डिनर के बाद लंच एक फिल्म दिखाई जाती जो क्लासिकल मूवीज होती हैं। तो हम सब ये मेघे ढाका तारा मूवी देखने गए थे, और ये इतनी करुणास्पद मूवी है, करुणा से भरी हुई मूवी है कि जब ये जो नायिका है और क्षय रोग से मृत्यु के करीब पहुंचती है, और जो उसके डायलॉग्स हैं और जो रुदन है और जो उसका पछतावा है, मतलब मैं देख रहा था कि हम लगभग 70-80 स्टूडेंट थे और सब मतलब सुबक रहे थे, रो रहे थे, मतलब गले से हिचकियां निकल रही थी, इतनी करुण फिल्म है। तो क्षय रोग एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। आप लोगों को शायद ये भी मालूम होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी जो कमला नेहरू थी, उनकी भी मृत्यु क्षय रोग के कारण ही हुई थी, लाइलाज बीमारी थी। और उसके वो कब की बात है आप सोचिए कि 40 के आसपास की बात है, और आज हम उससे लगभग 75 साल आगे निकल चुके हैं, और फिर भी ये बीमारी अभी तक हमारे यहाँ बनी हुई है, और दुनिया के सबसे ज्यादा क्षय रोग पेशेंट भारत में ही है। तो इस पर मित्रों कहीं भी आपको मिले तो थोड़ा सा देखिएगा कि भारत में ये समस्या किस रूप में है, इसके लिए क्या सरकार कदम उठा रही है, क्या और किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस पर एक अखबार का एडिटोरियल कमेंट है, शायद इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल कमेंट है क्षय रोग पर ही। तो वो उस एडिटोरियल कमेंट का जो हिंदी वर्जन होगा वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि पता नहीं हिंदी अखबारों में इस क्षय रोग को लेकर उस तरीके से लिखा जाएगा या नहीं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विस की तैयारी करने का यही एक तरीका होता है कि आप चीजों को पकड़ना सीखिए। अब घटना तो ये अलग तरीके की है, लेकिन ये घटना पर कुछ नहीं आएगा, सीधे सीधे इस घटना पर चीजें नहीं आएंगे, उस घटना से क्या चीजें निकल कर आती हैं, क्या निकलनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों न्यूज AIR न्यूज से इतना ही। अब मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर आता हूं। मित्रों आपको मालूम है कि लगभग ये यूं कह लीजिए कि फाइनल सा ही हो गया है कि अब रेल बजट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं कि अभी तक दो बजट प्रस्तुत किए जाते थे, एक आम बजट होता था और एक रेल बजट होता था, रेल बजट पहले आता था। अब रेल बजट शायद ना आए, उसको मेन बजट में ही मर्ज कर दिया जाएगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, और चूंकि ये नीतिगत फैसला है और जो नीति आयोग है उसने इसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो मुझे लगता है कि रेल बजट को खत्म किया जाना भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। और ये टॉपिक देखिए है तो उस तरह से देखिए तो पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल साइंस का मालूम पड़ता है, लेकिन ये बेसिकली इसको हमें इकोनॉमिक्स से जोड़कर देखना होगा। ये जो सब्जेक्ट है ये आप कह लीजिए कि आपके मेंस के जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर का टॉपिक है। वो ये कि मान लीजिए कि आप रेल बजट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं या उस हिस्से को आपने मेन बजट में शामिल कर लिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या परिवर्तन होंगे, रेल की स्थिति में क्या सुधार हो सकता है, या इसके पीछे कौन से उद्देश्य हैं, कौन सा अर्थशास्त्र काम कर रहा है, या कोई राजनीतिक कोण है। तो इन सारी चीजों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि संडे के टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अंकलेश्वर जी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो भी इंग्लिश में ही है, मेरी कोशिश होगी कि देखता हूं कि इंग्लिश का मैं हिंदी आपको उपलब्ध करा पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर हिंदी में भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली लिखा ही जाएगा। और आज का जो बिजनेस स्टैंडर्ड है हिंदी का, उसमें सुबीर राय जी ने अपनी एक राय जाहिर की है कि जो रेल बजट को जो अब बंद करने का फैसला किया गया है तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रेल की सेहत को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो मैं समझता हूं कि वो कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लिपिंग्स मैं आपको मित्रों प्रोवाइड कर रहा हूं, चूंकि हिंदी में क्लिपिंग है और बड़े आराम से आप इसे समझ भी लेंगे। लेकिन जो स्वामीनाथन अंकलेश्वर जी ने जो लिखा है और इसमें भी जो सुबीर राय जी ने जो अपना ओपिनियन दिया है, उसमें ये जरूर कहा है कि रेलवे का कारपोरेटीकरण किया जाना चाहिए। कारपोरेटीकरण का मतलब है निगमीकरण किया जाना चाहिए। इसको अगर हम और सरल भाषा में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो निगम है इसे एक जैसे कि प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, उस पैटर्न पर काम करना चाहिए। ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसका अपना एक वेलफेयर ओरिएंटेशन है और वो रहना भी चाहिए, लेकिन वो एक सीमा तक होना चाहिए। और इसमें इन्होंने बताया है कि चूंकि अब वो बजट से अलग हो गया है तो इसकी संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए जब जो बजट होता है तो बजट पर राजनीतिक प्रभाव तो होते हैं, मतलब बजट भले ही वो अर्थशास्त्र का विषय है लेकिन वो अर्थशास्त्र राजनीतिक विचारधारा से अलग नहीं हो सकता। कोई भी अर्थशास्त्र राजनीतिक विचारधारा के आधार पर ही निर्मित होता है। तो रेलवे बजट पर वो राजनीतिक निर्णय तो काम करेंगे कि भैया आवश्यक वस्तुओं की जो ढुलाई है उनका भाड़ा न बढ़ाया जाए क्योंकि उससे महंगाई बढ़ जाएगी, रेलवे का जो थर्ड सिंपल है उनके किराए न बढ़ाए जाएं, लोग नाराज हो जाएंगे, जो बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जहां पर ट्रेवल नहीं होते हैं, जो जहां रेलवे को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है वहां रेलवे बंद न की जाए क्योंकि वहां के लोग नाराज हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमिकली इन चीजों के बारे में डिसाइड करेंगे तो चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी कि भाई जहां पर बहुत ज्यादा रेलवे को नुकसान हो रहा है, ट्रेवल करने के लिए पैसेंजर्स ही नहीं है, आप उनको बंद कर दीजिए। जहां रेलवे भाड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी चीज की ढुलाई कर रहे हैं, कुछ तो आप रिजनेबल बनाइए। तो इस तरीके से अगर वो बजट से हट जाएगा तो इस तरह की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ेंगी, और जब इस तरह की संभावनाएं बनेंगी तो फिर उन्होंने कहा है कि रेलवे की जो व्यवस्था है वह भी बेहतर होगी। तो मित्रों ये क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, एक जनसत्ता की क्लिपिंग्स है, खासकर दलितों के ऊपर, जो पी चिदम्बरम जी जो हमारे वित्त मंत्री रहे हैं उनके द्वारा लिखा गया है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, खासकर दलितों का जो मामला है काफी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के AIR न्यूज और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं मित्रों लाइफ मैनेजमेंट पर। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले दो दिनों में मेरे पास जो मेल्स आए हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे मेल्स की है जो इस बात के प्रति बड़ा एक खेद नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जो लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा है वो लास्ट में चला गया है, तो उसकी वजह से उसका समय कट हो गया है, कभी कभी नहीं भी आ रहा है। और उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि शुरू में पढ़ने सुनने से जो एक जोश आ जाता था और एक रुचि बन जाती थी वो थोड़ी सी बाधित हो गई है, और नो डाउट कि उसमें आदत भी हो जाती है क्योंकि डेली ऑडियो गाइडेंस उसी पैटर्न से ही शुरू हुआ है तो वो आदत से भी पड़ी हुई है। लेकिन देखते हैं मित्रों, कुछ दिनों तक चलने दीजिए, लेटेस्ट होप की चीजें बेहतर होंगी और ये पैटर्न आप लोगों को पसंद आएगा, नहीं तो फिर कुछ न कुछ देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, इसको कैसे और व्यवस्थित किया जा सकता है, उस पर हम लोग सोचेंगे। लेकिन आप लोगों का जो प्यार इसे मिल रहा है उस प्यार के प्रति मैं बहुत ही मन से लाख लाख बार आप कह लीजिए कि आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों अब मैं आपको लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत में हेलन केलर के इस एक छोटे से वक्तव्य से करता हूं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हेलन केलर हैं, आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना हो, दुनिया की बहुत ही सम्मानित महिलाओं में मानी जाती हैं, और सम्मानित महिलाओं का जो उनको जो डिजर्व करती हैं वो ये कि ये शुरू से ही गूंगी रही, ब्लाइंड रही, बोल नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, सोच करके देखिए, और इसके बावजूद इसके बावजूद वो एक तो दुनिया की वो पहली मतलब इस तरह की ऐसी महिला रही जिन्होंने बीए की डिग्री ली, बीए की डिग्री इन्होंने हासिल की। वो राइटर भी रही, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही और कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया भी, लेक्चरर भी रही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि गूंगी और मतलब अंधत्व के बावजूद, गूंगेपन और अंधत्व के बावजूद इनकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत अद्भुत थी। मित्रों इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, जब आप उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मतलब इनमें इतना इतनी जीवंतता है, इनके कथनों को पढ़कर के दंग रह जाना पड़ता है कि ये क्या है, मतलब ये किस तरीके से ये बात कह रही हैं। मतलब कहीं एहसास ही नहीं होता कि यार हेलन केलर के पास आंखें नहीं है, एहसास ही नहीं होता है जिस तरीके से वो वर्णन करती हैं, जिस तरीके से वो जीवन का आनंद उठाती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जीवन के आनंद के लिए शरीर के इन अंगों का होना कोई जरूरी ही नहीं है, अनिवार्यता ही नहीं है। इनके बिना भी जीवन को बहुत ही आनंद के साथ न केवल जिया ही जा सकता है बल्कि जीवन में उपलब्धियां भी हासिल की जा सकती हैं। इनका जन्म मित्रों 1880 में हुआ था और इनका जो निधन है 1967 में हुआ, 1968 में, यानी कि आप कह लीजिए कि इन्हें अच्छी उम्र ईश्वर ने दी, 88 ईयर्स की इनकी आयु रही। ये उनकी जीवंतता का एक अलग से दूसरी तरह का परिणाम है। अमेरिका की थी और अब इनके जन्म स्थान को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत आवाज उठाई, मजदूरों के लिए बहुत आवाज उठाई, समाजवादी व्यवस्था के लिए इन्होंने बहुत आवाज उठाई। मैंने जैसा कि मैंने कहा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, मतलब ये नहीं कि केवल कमरे में बैठ करके काम कर रही हैं, कॉलेज के क्लासरूम में गई और लेक्चर दे करके चली आई, बकायदे उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया है। सोच कर देखिए मित्रों, इनका एक छोटा सा कथन है और बड़ा प्यारा सा कथन है, मैं वो कथन आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से मैंने लिया है, उन्हीं का कथन है, इन्वर्टेड में है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक सहेली से, जो पेड़ों के बीच लंबी चहलकदमी करके आई थी, पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। उसके जवाब को सुनकर मैंने खुद से एक प्रश्न किया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक घंटा पेड़ों के बीच बिताकर आए और उसके पास बताने लायक कुछ भी खास न हो कि उसने क्या देखा, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों बस केवल ये कथन है, आप देख रहे हैं कि सघनता देखिए, अनुभव की सघनता देखिए कि अनुभव की सघनता कितनी जबरदस्त होती है। जिसके पास आंख नहीं है वो देख रहा है, उसको आश्चर्य हो रहा है कि कोई एक घंटा पेड़ों के बीच होकर आ जाए और जब मैं उनसे पूछ रही हूं कि तुमने क्या देखा तो वो कह रहे कुछ भी नहीं, जबकि आंखें उसके पास हैं। और हेलन केलर उन लोगों में थी कि अगर वो 10 मिनट भी कहीं रह करके आ जाए तो उसका ऐसे वर्णन करती थी जैसे कि उन्होंने जिंदगी के सबसे अच्छे पल वहां गुजारे हैं और उसका खूब भरपूर उन्होंने आनंद लिया है। मित्रों इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है कि हमारी आंखें तो खुली हैं लेकिन वो देख क्या रही हैं। और याद रखिए कि यहां जिस देखने की बात कही जा रही है वो दृश्यों की बात नहीं की जा रही है। आंखें खुली हैं तो आंखों पर तो रेटिना पर दृश्य तो उभरेंगे ही उभरेंगे, ये तो वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन यहां जिस देखने की वो बात कर रही हैं उस देखने का संबंध अनुभव से है, वह उस देखने से है जो देखना आपका आपके अंदर समा गया है, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जिस जो आपकी स्मृति में शामिल हो गया है, जिसे आप दोबारा कभी याद करके खुश हो सकते हैं। मतलब जो अनुभव का हिस्सा बन गया है, उस देखने की बात कर रहे हैं। मित्रों हम सबके साथ क्या होता है, सच में यही होता है, ये कोई उस उनकी सहेली के साथ घटी हुई घटना नहीं है बल्कि हम सब के साथ इस तरह की घटना घटती है और लगभग लगभग रोजाना घटती है और एक दिन में न जाने कितनी कितनी बार घटती है। दोस्तों जीवन के जो बहुत छोटे छोटे अनुभव हैं, समय के छोटे छोटे टुकड़ों में समाये हुए जो छोटे छोटे अनुभव हैं, मुझे लगता है कि उन छोटे छोटे अनुभवों से बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े आनंद हासिल किए जा सकते हैं। और जिस दिन हम में ये क्षमता आ जाएगी, मान करके चलिए कि भौतिक दृष्टि से हम कितने भी छोटे क्यों न हो, जिंदगी बड़ी जिएंगे, हमारी जिंदगी तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो जिंदगी का बड़ापन है वो भौतिक चीजों की मोहताज नहीं हुआ करती है कि बड़े बंगले हो और महंगी गाड़ी हो और बड़ा पद हो, दुनिया भर का बैंक अकाउंट हो, इनकी मोहताज नहीं होती है। जिंदगी जिन चीजों की मोहताज होती है वो केवल यही कि जो पल हैं, जो छोटे छोटे मोमेंट हैं, जो टाइम के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको हम किस तरीके से अनुभूत करते हैं, इनका कितना आनंद उठा सकते हैं। हेलन केलर जी ने यही बात अपने इसमें कही है। मित्रों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। एक मेल है मित्रों, उसमें उन्होंने कहा है कि पूछा है कि जो स्टूडेंट सफल होते हैं वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज जो है उनकी वेबसाइट के बारे में अक्सर सजेस्ट करते हैं, सर हमें क्या करना चाहिए। देखिए बट नेचुरल है कि ये तो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आपको सभी मंत्रालयों की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको वहां मिल जाती हैं, तो आप चाहें तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको इसका फायदा मिला होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि वेबसाइट को विजिट करने की शायद बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं होती, क्योंकि जो अखबारों में जो आप पढ़ते हैं, जो न्यूज में सुनते हैं, वो सब वहां कवर हो चुका होता है, वो भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से चीजें लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो को आप ये मान लीजिए कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है उसका एक साउंड एडिशन है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा कि वो उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो ऑल इंडिया रेडियो लेता है। आप डीडी न्यूज में देखेंगे तो डीडी न्यूज में भी आपको वहां की बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उनकी वेबसाइट हो, तो वहां से जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो इन डीडी न्यूज में और ऑल इंडिया रेडियो में कवर हो जाती है, अखबारों में भी कवर होती है, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं फिर अखबार वाले उसे भी लेते हैं, तो उसमें कवरेज तो हो जाता है। इसलिए मैं अनिवार्य तो नहीं मानता कि अनिवार्य ही है, लेकिन यदा कदा यदि आप कभी विजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप रेगुलर विजिट करने की भी स्थिति में हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, एटलीस्ट नुकसान तो नहीं ही होगा, आप अगर समय देंगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही उसका आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि दूसरे उसके तरीके हैं तो इसलिए मैं कभी अलग से इसके लिए इस पर बात नहीं करता हूं। तो दोस्तों अपने अपनी सभी उन दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं। इनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं, प्रियंका गुप्ता गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, इंशु शर्मा दिल्ली से, रितेश नायक महासमुंद छत्तीसगढ़ से, कुमार गौरव मुजफ्फरपुर बिहार से, हेतराम प्रजापत जयपुर से, कैलाश चंद्र जोशी, नीलकांत भट्ट, संजय रावत, अमित कुमार गिरिडीह बिहार से, रजत कुमार, अभिषेक बासु, अंजलि सिंह, सागर मलिक शामली उत्तर प्रदेश से और अनुराधा साहू, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।